भक्तिमय जीवन में जब भक्त लोग आते हैं तो उनके पास एक शब्द है आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम को नामृत स्वादनम। प्रतिपदम अर्थात हर कदम में आनंद की वृद्धि होने वाले दिन आ जाते हैं। और भौतिक जगत में यही शब्द दूसरे ढंग से है, पदम पदम यद विपदम। यहां पर हर कदम पर क्या है, विपदाएं ही विपदाएं। हर क्षण व्यक्ति डरा हुआ है, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी उसको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, अब क्यों प्रॉब्लम आ गई, शरीर की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, यहाँ की प्रॉब्लम, वहां की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, पड़ोसी की प्रॉब्लम, पार्किंग की प्रॉब्लम, नाना प्रकार के व्यक्ति फंसा हुआ है। किस समय कौन सी प्रॉब्लम आ जाए कुछ पता नहीं। तो इसलिए कहा गया पदम पदम यत विपदम, हर कदम पर ही क्या है, विपदाएं। लेकिन भक्तिमय जीवन में जो लोग ठीक प्रकार से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर कदम पर आनंद के सागर में वृद्धि होती रहती है। वैसे तो भौतिक दृष्टि से देखें सागर उतने का उतना ही रहता, चाहे कितनी नदियां उसमें आ जाए, लेकिन अपनी सीमाओं को नहीं वो बोलता। लेकिन जो भक्ति का आनंद है, भक्ति का सागर है, उस सागर में आनंद की वृद्धि होती है। इसलिए जब लोग कंडीशन स्टेज में रहते हैं और उस समय जब वो अपने अनर्थों से जूझ रहे होते हैं, अनर्थ क्या होते हैं, अनर्थ की डेफिनेशन क्या है, वैसे अगर इसी को संधि विच्छेद करें तो सारा सार मालूम पड़ जाता है। अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, वो सब चीजें, वो सब इच्छाएं या वो सब वस्तुएं जिसका कोई वास्तव में अर्थ नहीं है, मतलब कोई मीनिंगलेस थिंग्स या थॉट्स। भौतिक जगत पे हम लोग ज्यादातर उन सब वस्तुओं से आकर्षित रहते हैं या उन सब विचारों से आकर्षित या कंटेम्पलेशन में रहते हैं जिनका वास्तव में स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इन सब चीजों को अनर्थ कहा जाता है। और भक्ति की जब सीढ़ी शुरू करते हैं व्यक्ति भक्त हो तो साधु संघ के बाद क्या शुरू होता है, भजन क्रिया। और भजन क्रिया का मतलब है वो सब चीजें जो भक्ति के अनुकूल हैं, जिसमें भगवान के नामों का जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, धाम का भ्रमण करना, भागवतम का अध्ययन करना, डीटी वर्शिप करना, पंचांग भक्ति बोले या जो दूसरे भक्ति का अंग है, वो सब चीजों का अनुशीलन करना। तो जो चीजें इस प्रकार हम लोगों के लिए जो भजन क्रिया बनती है, यही भजन क्रिया हमको जो हमारा मन और हमारी इंद्रियां विषयों की ओर पूरी तरह नियोजित हैं, कुंती महारानी की भक्ति बताती हैं कि जिस प्रकार हे भगवान मेरे आकर्षण को आप अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित कीजिए जिस प्रकार एक नदी समुद्र की ओर स्वतः ही आकर्षित होती है। नदी को बताना नहीं पड़ता कि आप इधर से जाएं, फिर लेफ्ट टर्न लें, फिर राइट टर्न लें, थोड़ी देर रुक जाएं, है ना, नहीं, नदी को मालूम है कि मुझे कहां जाके मिलना है, सागर में जाके मिलना है, तो उसको किसी भी प्रकार की बाधा रोक नहीं पाती। जहां पर भी अगर कुछ ऐसा पहाड़ी आ गई कुछ हो गई तो अपना रास्ता निकालना जानती है और भागते भागते कहां चली जाती है, सीधा समुद्र में लीन हो जाती है। तो कुंती महारानी कह रही है इसी प्रकार हमारा आकर्षण भी भगवान के प्रति होना चाहिए, लेकिन अभी उल्टा है, इसीलिए इसको अनर्थ कहते हैं। अभी यही आकर्षण भगवान पर ना होकर इस भौतिक जगत के विषयों की ओर है और इन विषयों में इतना आकर्षण बढ़ चुका है कि वो हमारी आदत के रूप में बन चुका है कि हम लोग जैसे कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम करता है और कंटिन्यूअसली काम करने के बाद वो मास्टर हो जाता है उसका, नहीं किसी भी फील्ड में, क्योंकि बार बार काम करने से, उसी तरह हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग जिन कामों में लगे हुए हैं सुबह दोपहर शाम या जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, इनके गहरे संस्कार इतने ज्यादा हृदय की ग्रंथियों के अंदर गांठें लग जाती हैं कि व्यक्ति उसको खोल नहीं पाता और उसको पता भी नहीं चलता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। जैसे एक ड्रंकर्ड मैन जिसने पी रखी है, वो अपने आप को हमेशा क्या बताता, मैं सही, वो दूसरे को बिल्कुल समझता है। पागल खाने में सारे पागल डॉक्टर को पागल कहते हैं, एक दूसरे को पागल बोलते हैं। तो कहने का मतलब वो नेचर में आ जाता है, वो ब्लड के अंदर आ जाता है, या वो ऐसी आदतें बन जाती हैं कि व्यक्ति को वास्तव में पता नहीं चलता मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं। और इस प्रकार इसे भजन क्रिया के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। जब गुरु के संरक्षण में रहकर व्यक्ति भजन क्रिया का पालन करता है, जैसे उस दिन हम लोग वहां चर्चा कर रहे थे जयपुर में, शरणागति के जो लक्षण बात कर रहे थे, अनुकूल से कृष्ण, है ना, क्या था, अनुकूल से संकल्प, संकल्प कर लेते हैं कि उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, उन विचारों को कल्टीवेट करेंगे या उन भक्तों का संग करेंगे जिसकी वजह से क्या होता है, भक्ति में हम अग्रसर रहते हैं, दिन ब दिन हमारी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो जब इसी विचार पे, इसी पे थोड़ा विचार किया जाए तो ये विचार करने वाली बात उसी व्यक्ति के दिमाग में आएगी जो वास्तव में शरणागति लेना चाहता है। अन्यथा दो बोट पर सवार होने का मतलब क्या है, डूबना। ज्यादातर शुरुआत में जब भक्त जुड़ते हैं तो उनका फिलोसफिकली तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता थोड़ा थोड़ा, कृष्ण भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम आत्मा हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, सेवा के रूप मालूम पड़ते हैं और इन सब सेवाओं का माध्यम पता चलता है हरि नाम या भगवान के पवित्र नाम का जप। लेकिन वो जो बचपन से या पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कारों के आधार पर जो हम लोग अपनी नेचर बना चुके हैं वो हमें बार बार रोकती है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि वही इच्छाएं और वही भाव अभी भी है दिमाग में, क्योंकि बचपन से व्यक्ति उन्हीं भावों को कल्टीवेट कर रहा था कि मैं ऐसा करूंगा बड़ा होके, जब मैं धन इतना कमाऊंगा तो तब जाकर मैं सुखी होऊंगा, तो वो कंसेप्ट दिमाग में रहता है, उसको लेकर चलता है। लेकिन जैसे ही वो अपना उद्देश्य बनाने का प्रयास करता है, फिलोसफी के लिए थोड़ा सा क्लियर होता है उसका माइंड, तो धीरे 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 उसको लगता है कि हाँ बात तो ठीक है। क्योंकि जैसे तीन प्रकार के इंटेलिजेंट बताए जाते हैं, जो एक सुनकर पालन करता है, एक एक्सपीरियंस करके पालन करता है और एक बार बार बोलने पर भी या एक्सपीरियंस करने पर भी पालन नहीं कर पाता। तो तीन श्रेणी के लोग हर जगह होते हैं। तो जो प्रथम श्रेणी है कि सुनकर पालन करने वाला, ये बहुत ही कम होते हैं, सात्विक वृत्ति के लोग सुनकर पालन करने का प्रयास करते हैं। मिश्रित अवस्था के लोग या रजोगुणी लोग एक्सपीरियंस करके वो करना चाहते हैं। इसलिए जब व्यक्ति को बताया जाता है कि आप ऐसा ना करें तो कैटेगरी देखनी पड़ेगी कि किस कैटेगरी में अभी व्यक्ति है, किन गुणों में प्रवेश कर रखा है उसने, तो जितना मर्जी समझा लें तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए भजन क्रिया का सबसे पहला उद्देश्य कि जब व्यक्ति गुरु के माध्यम से दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन शुरू करता है तो धीरे धीरे अनर्थों की निवृत्ति होना शुरू होती है। और इन अनर्थों की निवृत्ति में सबसे पहले ग्रॉस लेवल के अनर्थ की निवृत्ति होती है। ग्रॉस लेवल के कौन से होते हैं, अनर्थस, टेलीविजन बंद कर सकता है, ग्रॉस लेवल के अनर्थस मतलब बड़े बड़े, हाँ, जो स्थूल स्थूल स्थूल, मैं हत्या से बात कर रहा हूँ, आप बताएंगे तभी, मैं इसीलिए आपकी तरफ डाला है। सेंसुअल टेस्ट हो गए जिसमें चार नहीं मारे, प्लस मूवीज देखने जाना, ये सब जो आप बता रहे हैं, घर में टेलीविजन देखना, ये सब, तो धीरे धीरे उसको लगता है कि इन सब चीजों पे टाइम लगाना, इन्वेस्ट करना, ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। और धीरे धीरे अपने टाइम यहां से बचाकर वो कहां स्पेस कहां लगाना शुरू करता है, भक्तों के संग में, भक्ति में। लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने इन इंद्रियों को भक्ति में लगाने का प्रयास करता है, तो भी अलग प्रकार के अनर्थ डेवलप होते हैं। भक्ति में ऐसा अवगुण नहीं है कि भक्ति करो तो कुछ अलग प्रकार के अवगुण आ जाएंगे आपके अंदर, नहीं। ये जो मेंटालिटी हमारी बन चुकी है, जो हमारी चेतना पर क्या कहते हैं दूषण है बचपन से, उसके लक्षण दूसरे ढंग से प्रकट होते हैं, सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं, या वो भी ग्रॉस रूप में प्रकट होते हैं जो साफ ही देखते हैं। बाहरी समाज में हम लोग कुछ इस प्रकार के नियमों का पालन शुरू कर देते हैं वास्तव में, लेकिन धीरे धीरे जब भक्ति में आते हैं तो कुछ अलग प्रकार के अनर्थ भी दिखने शुरू होते हैं। लेकिन अहंकारवश व्यक्ति कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, या वो अपने आप के अनर्थ, अपने अनर्थों को खुद जज नहीं कर सकता कि सच में क्या मेरे अंदर इतने अनर्थ हैं क्या, जैसे प्रभुपाद जी करते थे, या हम लोग पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति खुद बंधा हुआ है हाथ और पैर से, वो अपने को नहीं खोल सकता या दूसरे को नहीं खोल सकता, तो उसको खोलने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए जो खुद खुला हो। उसी प्रकार जब व्यक्ति इस प्रकार के अनर्थों से जूझ रहा होता है और भक्ति का नियमों का पालन भी कर रहा होता है, तो ज्यादातर हर व्यक्ति अपने को ये सोचता है कि मैं सही, प्योर डिवोटी सिंड्रोम, एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें उसको ये लगता है कि आई एम द बेस्ट इन ऑल फील्ड्स। कोई सेवा की बात करो, कोई कलेक्शन की बात करो, कोई ड्रामा की बात करो, आचरण की बात करें, हर फील्ड में उसको लगता है कि आई एम द बेस्ट, मेरा जो विचार है ये बेस्ट है, क्योंकि कहां से निकला है मेरे दिमाग से। तो इस प्रकार के धारणा शुरू, और जब व्यक्ति इन अनर्थों को पहचानना शुरू करता है, क्योंकि अपने आप पहचानना वास्तव में बहुत मुश्किल है, जो कोई व्यक्ति सात्विक वृत्ति में है और जिसको शायद पूर्व जन्म की भक्ति के कारण अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा अंदर से प्रेरित कर उस स्तर पर ले आते हैं। अन्यथा ज्यादातर भक्तों को आवश्यकता पड़ती है दूसरे भक्तों की मदद की, सीनियर गुरु की मदद चाहिए होती है, ताकि वो लोग ये बता सकें कि हमारे अंदर भी कितना अनर्थ है, किन चीजों में अभी हमारा बंधन है, किस प्रकार हम इस भौतिक जगत से बाहर निकलेंगे। तो ये सब अनर्थाज हमें कोशिश करनी चाहिए कि कई बार हम लोगों को, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते थे कि हर एकादशी के दिन हम लोगों को चाहिए कि हम इंट्रोस्पेक्टिव बने, इंट्रोस्पेक्शन करें और लिखें कि अभी मेरी कहां कहां गलतियां हैं, या किन किन चीजों में अभी भी मैं बहुत ज्यादा गलत हूं, और अगली एकादशी तक मुझे इन पर काम करना है। जैसे कई बार भक्त मिलते हैं, प्रभु जी मेरा गुस्सा मेरे से शांत नहीं होता, तो ठीक है, गुस्सा एक बहुत बड़ा अनर्थ है, 11-15 दिन में 3 बार हुआ था, ठीक, तो लिख लिया और इस पर क्या करना शुरू किया, कार्य शुरू किया करना कि क्यों आता है, किस लिए आता है, क्या करूं, उस समय फिलॉसफी के लिए अपने को ठीक करा, और अगली एकादशी में क्या करा, इंट्रोस्पेक्टिव करने के बाद उसको देखा कि हाँ अब कितना हुआ, या और कहीं आकर्षण है बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति, या खाने के प्रति मीठा बहुत खाते हैं, या कोई और ऐसी चीज है। तो एकादशी के दिन व्यक्ति इन चीजों को क्या कर, अपने अनर्थों को भी क्या कर सकता है, देख सकता है, इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है, प्लस इन्हीं 15 दिनों में भक्ति में किन किन चीजों में वो आगे बढ़ने का प्रयास किया, कि इन 15 दिनों में मेरी चैंटिंग कैसे हुई, क्या मैं पूरा दिन इन 15 दिनों में मेरा जब गप की तरह हुआ, या जब की तरह हुआ, लोगों से बातें करते हुआ, टेलीविजन देखते हुआ है ना, या इधर उधर ध्यान देते हुए हुआ, कितना मैं सुन पाया, कितनी अच्छी चैंटिंग हुई, क्या साथ में मैंने कोई, कई बार भक्त लोग अपने माइंड को ठीक प्रकार से मंत्रों पर रखने के लिए क्या हम मदद लेते हैं, पुस्तकों की मदद लेते हैं, थोड़े से चैंटिंग के बाद कुछ पुस्तक पढ़ ली, फिर चैंटिंग शुरू कर दी, तो अपनी चैंटिंग की क्वालिटी पे क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। दूसरा, मेरा अध्ययन कैसा रहा पूरा इन 15 दिनों में, कि क्या मैं जो किताब मैंने सोची थी उसको फिनिश कर पाया, या इतने चैप्टर्स फिनिश कर पाया, क्या मैं कॉन्टिन्यूसली 1 घंटा रीडिंग कर पाया, नहीं कर पाया तो विचार करें उस पर, भक्तों का संग मैं ठीक ढंग से कर पाया या कुछ ऑफेंसेस करके आया, क्योंकि जिस प्रकार के हमारी क्या बोल सकते हैं उसको वृत्तियां हैं, आदतें हैं, क्योंकि हम लोग भौतिक समाज में भी रहते हैं, वहां के लोगों से भी डील करना पड़ता है, और अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और अलग अलग मेंटालिटी के लोग मिलते हैं। बेवकूफ बनाने वाले भी मिलेंगे, गुस्सा दिलाने वाले भी मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। तो क्या उसी तरह का आचरण मेरा भक्तों के साथ भी है क्या? क्या उसी मेंटालिटी के साथ मैं भक्तों के बीच में बैठता हूं क्या? तो भक्तों का संग ठीक प्रकार से कर रहा हूं या नहीं, तो ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। तो जब भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं अगर हम इस प्रकार करने लग जाएंगे तो इसका एक सबसे बड़ा साइन अच्छा क्या है कि व्यक्ति का इसका मतलब क्या है कि वो सच में क्या चाहता है, मैं आगे बढ़ू। नहीं हो रहा तो डिस्कस करना चाहिए। अगर तो भक्तों के बीच में बहुत अच्छा संबंध है आपस में तो आपस में कर सकते हैं मित्रता पूर्वक एक दूसरे की मदद करते हुए, नहीं तो सीनियर डिवोटी से डिस्कस कर सकते हैं। इट्स अ साइन ऑफ गुड डिवोटी कि वो हमेशा अपने को सुधार के कार्यों में लगा रहता है, अपने अनर्थों का व्याख्यान करता रहता है और पूछता रहता है कि मैं इन चीजों पर कैसे विजय प्राप्त करूं, मेरे अंदर ये दिक्कतें चल रही, मैं इसमें कैसे आगे बढ़ूं। क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जैसे एक डॉक्टर को कोई इंस्ट्रूमेंट उठाना है तो इंस्ट्रूमेंट मना नहीं करता कि मुझे मत उठाओ, मेरे से नहीं देखा जाता, आप उसको काटते हो, मेरे को ऐसा नहीं। वो सबको मालूम है कि मैं डॉक्टर के हाथ पर खिलौना हूं, उसका इंस्ट्रूमेंट हूं एक बड़े पर्पज को सॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार गुरु और भक्तों के मध्य में हम जब रहते हैं तो हम लोगों को एज ए इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमें याद होगा हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि यहां से भारत से लोगों को विदेशों में ले जाया जाता था स्लेव्स बनाकर और उनको बंधुआ मजदूर बनाकर हमेशा के छोड़ दिया जाता, बस यहीं रहो, और वो पूरा दिन इस प्रकार कार्य करते थे उनके लिए। तो इस तरह का कार्य करने से क्या होता था, उनकी ना मेंटालिटी स्लेवनेस की हो गई थी कि बस हम तो हम इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ जीवन नहीं। जो जीवन वो तो शोषण का जीवन था, लेकिन भक्ति में शोषण नहीं होता। एक बार एक भक्त ने शिकायत लगाई महाराज से कि महाराज ये अथॉरिटी मेरा बहुत शोषण करती है। महाराज ने पूछा किस रूप में, क्योंकि महाराज मुझे बहुत सारी सेवा दे रही, मुझे इन्होंने यहां सेवा दी, फिर उसके बाद वहां सेवा दी और इस प्रकार। तो महाराज ने कहा ये शोषण नहीं है, ये तो कृपा है। सेवा शोषण नहीं हो सकती, सेवा तो कृपा होती है, अर्थात भगवान की विशेष कृपा है कि आपको सेवा प्राप्त हो रही है। अगर वो हमें शोषण लग रही है तो इसका मतलब बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े हाथ जोड़कर सेवा प्राप्त करता है, सेवा कर लेता है, तो उस व्यक्ति के जो व्यक्ति सेवा दे रहा है वो उसका ध्यान ना रखे। जब कोई सीनियर डिवोटी अपने भक्तों को सेवा दे तो उसकी पूरी जिम्मेवारी बनती है अपने नीचे के भक्तों का ध्यान रखने का कि इसका जप समय पर हो रहा है कि नहीं, इसकी रीडिंग मेंटेन हो रही है कि नहीं, इसका संग किन के साथ हो रहा है, कहीं ज्यादा प्रज्वलित में तो नहीं लगा रहता हमेशा, कितना सो रहा है, कितना उठ रहा है, कितना खा रहा है ना, पूरा ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए अपने भक्तों की, और उसके बाद वो भक्त फील करेगा कि हाँ मेरे सर पर कोई है जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति की चिंता करता है, ना कि अपने काम निकालने के लिए सुबह शाम मुझे दुआएं रखता है। समझ रहे हैं? ऐसे भक्तों को फिर क्या लगता है कि क्या हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, क्योंकि हमने लव एंड अफेक्शन तो दिया ही नहीं, हमने तो केयर की नहीं। तो जब केयर नहीं की जाती, खाली काम निकलवाया जाता है और तमका लगा लिया जाता करके, तो उस व्यक्ति को फील होता है कि भाई करा तो मैंने था सब कुछ, भागा तो मैं था सब, मेरी चैंटिंग छूटी थी, मैंने इतने मिस कर दी चैंटिंग है ना, रीडिंग मेरी मिस हो रही है। तो पूरा का पूरा जैसे एक पिता या माता अपने बच्चों का ध्यान रखती है सुबह से लेकर शाम तक, खाने का, पीने का, स्कूल का, होमवर्क का, हर चीज का, उसी तरह प्रचारकों में भक्तों में भी क्या होता है कि अपने जितने भी भक्त हैं नीचे उनकी पूरी केयर करनी चाहिए, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, और फिर उनका विशेष करें कि किस एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम लोग कुछ भक्तों में होता है कि जब वो किसी भक्त को भक्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्या हेल्प कर सकता है मेरे, किस रूप में, तन से करेगा, मन से करेगा, धन से करेगा। तो मन से करने वाले को कहते हैं तू जा भाई, मन तो हम भी लगा लेंगे, हमें चाहिए तन वाला और धन वाला। तो कई बार होता क्या, फिर कई बार फिजिकली अगर कोई इस तरह है तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते कई बार एक्सटर्नली देखकर, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि जो भगवान से भक्ति से आकर्षित होकर आ रहा है वो कल को क्या से क्या कर सकता है। आपने देखा होगा महाराज के शिष्य हैं और बड़े अच्छे भक्त हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कई बार देखा होगा चेयर पर आते हैं वो महाराज की व्यास पूजा पर, अहमदाबाद मंदिर से हैं वो, और बुक्स भी लिख रहे हैं और टीचिंग करते हैं कॉलेज में। तो देखने में तो लगता है कि ये तो चेयर पे रहते हैं हमेशा, हाथ पांव भी ठीक नहीं है, उठ भी नहीं सकते, खड़े भी, केवल जितना अंग शरीर का उनका चल रहा है, लेकिन उन्होंने वो अपने गुरु महाराज की सेवा में पूरी तरह लगा। ऐसे ही वाचस्पति प्रभु एक रशियन डिवोटी, उनके दोनों हाथ नहीं है, यहां से फौज में थे, कट गए थे, मायापुर में परिक्रमा में देखते हैं, वृंदन में देखते हैं, वो रशिया में मॉस्को में नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है बिना हाथ के। तो कितने हाथ वालों के इंस्पिरेशन है वो, आप उनको खाता पीता देख लेंगे अगर तो आप हैरान हो जाएंगे, हाथ तो है ही नहीं, कैसे खाते होंगे। कोई उनकी प्लेट लगा के लाता रखता है तो उनको खाना पड़ता है डायरेक्ट मुंह से, और उनका अगर उत्साह देख लेंगे आप भक्ति में तो वास्तव में शर्म आ जाएगी, इतना अधिक उत्साह है नाचने में, नाचते हैं जब कीर्तन हो रहा था खूब। और मॉस्को में जब मैराथन इत्यादि होते रेगुलर भक्त हैं उसके क्या करते हैं, किसी तरह दोनों हाथों को पकड़ के, अब हमसे तो नहीं हो रहा बट आदत पड़ गई उनकी, इतने इतने हाथ हैं तो उससे गीता पकड़ लेते हैं ऐसे, और गाड़ी में जाते नॉक करते हैं ऐसे करके कुछ हाथ से पैसे कहीं करके, तो शीशा खोलता व्यक्ति तो गाड़ी के अंदर किताब डाल देते ऐसे करके, और फिर बोलते हैं इसका इतना पैसा और जेब आगे कर देते, वो पैसे जेब में चले जाते। मायापुर में हमारे से ड्रामा में वो थे, हमारे साथ स्नान करना, हर चीज खाना पीना, और ये कहने मतलब ऐसे भक्तों का उत्साह देखकर, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि ये लोग शारीरिक दुर्बलता होने पर भी या शारीरिक अपंग होने पर भी गुरु के प्रति ऐसे डेडिकेटेड है, हजारों लोगों को भक्त बना रहे हैं। और कई बार होता है कि कोई व्यक्ति वाक पटुत्तर में बहुत अच्छा होता है लेकिन भक्त नहीं बनते उससे, कारण आचरण नहीं। तो इस प्रकार भक्तों को चाहिए कि एक्सटर्नल पर भी वो ध्यान दें और इंटरनल पर भी दें। तो इसलिए ये जो अनर्थास हैं, जो सूक्ष्म और ग्रॉप सॉरी सटल, ये दोनों प्रकार के अनर्थास हमारे क्या है, भक्ति में ऑब्स्टेकल्स है। एक बुक है उसमें लिखा है, उसमें बड़े सुंदर टॉपिक्स हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको भी, कि ऑब्स्टेकल्स इन पाथ ऑफ भक्ति, कि क्या क्या हमारे भक्ति में दिक्कतें आती हैं। श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा महारानी जी, श्री श्री गणताय भगवान की जय, गोष्ठ मंदे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जब भक्ति में आते हैं और प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का, तो इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे सुंदर साइन ये है कि वो बड़ा इंट्रोस्पेक्टिव होगा, वो अपने हर कर्म को, हर क्रिया को जज करेगा या सैंक्शन करवाएगा, कारण क्योंकि वो व्यक्ति सच में चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। और अगर कोई व्यक्ति केवल जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट टाइप जो होते हैं, लाइक क्या शब्द हो सकते हैं, फ्रीलांसर बोल सकते हैं, मनोधर्म से सारी चीजें करना, और उनको ये लगता है कि भक्तिमय चीजें कर ही रहूं ना जी, मुझे किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए बताया जाता है कि भक्ति में बाहर जाके तो हो सकता है कोई बोले मैं सेल्फ मेड मैन, मैंने कुछ भी नहीं था तो मैंने कर दिखाया, लेकिन भक्ति के जीवन में ये सब नहीं होता। भक्ति के जीवन में अगर कोई लिबरेटेड सोल है जिसकी भक्ति पहले ही बहुत अच्छी चरम सीमा पर थी, बस उसने जन्म इसलिए लिया है इसको पूरा करने के लिए, ऑलमोस्ट लिबरेटेड है, तो ऐसे लोगों को हो सकता है कोई आवश्यकता ना पड़े भक्तों की संख्या इस तरह करके। लेकिन हम जैसी कंडीशन सोल जिन्हें अपने अनर्थों के बारे में पता है कुछ परसेंट, बाकी सारी परसेंटेज गुरु को पता होती है, तो ऐसे भक्तों को चाहिए कि वो सदैव भक्तों के संरक्षण में रहकर अपना इलाज करवाते रहें और इतने सेंसिटिव रहें, क्योंकि भक्तों के बीच में रहना है तो इतने सेंसिटिव रहना चाहिए कि कहीं कोई अपराध ना हो, क्योंकि हम लोगों का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए शुद्ध नाम। शुद्ध नाम भक्तिवी ठाकुर जी बता रहे हैं अपने एक ग्रंथ में कि ज्यादातर जो भक्त जप करते हैं या तो नाम अपराध में करते हैं या नाम अभास में करते हैं। शुद्ध नाम में जप करना यह हर व्यक्ति लक्ष्य होना चाहिए, इस स्तर पर पहुंच नहीं पाता व्यक्ति, और ऐसा नहीं है कि पहुंच नहीं सकता, पहुंच सकता है, लेकिन किन कारणों से पीछे रह जाता है कि उसका सबसे पहले जब शुरुआत में भक्ति में आता है तो उसके अंदर इतना उत्साह होता है और धीरे धीरे वो उत्साह समाप्त क्यों होने लगता है कि उसका जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, उसका जो ग्रेटिट्यूड क्या होता है, कृतज्ञता जो महसूस नहीं कर पा रहा उन लोगों के प्रति जिन्होंने उनको भक्ति में लगाया। कितने लोग एंगेज होते हैं मालूम है एक व्यक्ति को भक्त बनाने में, बताइए, बता सकते हैं क्या क्या कौन कौन व्यक्ति एंगेज होते हैं व्यक्ति भक्त बनाने में? प्रसाद, भगवान का सुंदर दर्शन, सबसे पहले तो लोग इनसे आकर्षित होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इन दोनों के पास टच में नहीं आया तो हो सकता किसी भक्त के टच में आया हो जिसने कि मार्ग बताया हो। उत्सव, सुंदर मंदिर, कोई पुस्तक प्रभुपाद जी की, तो एक व्यक्ति को भक्त बनाने में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। कई भक्तों का आचरण, ऐसे भक्त हैं जिन्होंने केवल मंदिर में पहली बार गए और एक भक्ति दूसरे भक्त का पैर टच हो गया खाली और उन्होंने दूसरे भक्त एकदम तुरंत माफी मांगी और यूं करा उनको, कहते करे ऐसा क्या हुआ जो इतना वो कर रहे हैं, तो कहते हैं कि बाहर अगर कुछ ऐसा हो तो लड़ाई करते लोग कुछ भी छोटी बात पर, ये तो पैर टच होने पर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो बड़े हैरान हुए और उनसे पूछा कुछ और तो वो उनसे आकर्षित हुए और वो भक्त बन गए, आज दीक्षा लेकर वो मंदिर में है सेवा करते, केवल इसी एक आचरण से कि भाई ये कितने सेंसिटिव है मतलब दूसरे के प्रति। तो कहने का क्या मतलब है कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति उसी वातावरण में आगे बढ़ता है, कुछ और पुस्तकें पढ़ लेता है, कुछ लेक्चर ज्यादा सुन लेता है या और ऊंचे ऊंचे भक्तों के बीच में बैठना शुरू कर देता है, तो फिर धीरे धीरे समझ लीजिए न्यूज पेपर हाथ में आया था उसको, हर एक का मतलब जन्मपत्री हाथ में आया था उसकी, अगर वो ऐसे लोगों के बीच में आ गए ये ऐसा है वो ऐसा है इसने ये किया था उसने वो किया था, तो जो कृतज्ञता उसकी शुरू में थी लोगों के प्रति कि ये व्यक्ति है जिसने मुझे रास्ता दिखाया था मंदिर का, ये व्यक्ति है जिसने मुझे सबसे पहले प्रसाद सर्व किया था, कहा था प्रभु जी आप लीजिए अगर भूख गए तो, ये व्यक्ति जिसका मैंने पहले लेक्चर सुना था और मुझे लगा था कि हाँ मुझे नाम जपना चाहिए, ये व्यक्ति जिसने मुझे प्रचार करके पहले माला पकड़ाई थी और उसने बताया था कि माला ऐसे करते हैं, ये व्यक्ति जिसने मुझे अपना संग दिया था जब मैं थोड़ा कष्ट में था, तो धीरे धीरे जिनके प्रति कृतज्ञता थी, हम सोचें और विचार करें कि क्या आज भी हम उतने कृतज्ञ फील करते हैं उन लोगों के प्रति, तो हम पाएंगे कि वो परसेंटेज बहुत कम है। तो इस प्रकार जब हम लोग कृतज्ञता नहीं दर्शाते उन लोगों के प्रति और फिर हम एक शुष्क संग और शुष्क चैंटिंग करके ना, और केवल जिसे बोलते हैं बाहरी रूप से दिखावा टाइप, तो लोग उस स्तर पर आ जाते बात, और फिर नाम अपराध और नाम अभास में ही चैंटिंग होती। नाम अभास का मतलब कि जब व्यक्ति बहुत सजग है अपराधों के प्रति लेकिन फिर भी कुछ हो जाते हैं छोटे छोटे अपराध, और नाम अपराध का मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत है तो गलत है मैं तो बोलूंगा, मैं डरता नहीं, है ना, इस तरह की मेंटालिटी, मेरे लिए सारे बराबर, देखी जाएगी क्या आज तक तो कुछ नहीं हुआ, यह बिगाड़ लिखा हुआ, इतने साल से जब कर रहा हूं कुछ हुआ मेरे को, तो नाम अपराध में, तो नाम अपराध की स्थिति क्या है, हो सकता है कुछ समय और जब कर ले, तो जब वास्तव में जब नहीं है। और जो नाम आभास में कर रहे हैं, नाम आभास का मतलब होता है कि जैसे नाम आभास का मतलब है कि सूर्य अगर बाहर निकल आया तो अंदर रोशनी आ जाती है कमरे में थोड़ा सा, तो आभास होता है कि हाँ सूर्य बाहर आ गया। उसी तरह नाम आभास का मतलब है कि वो सिचुएशन जब लोगों को लगता है कि हाँ भक्ति है, कुछ हरि नाम में शक्ति है और उसकी स्ट्रेंथ हल्की सी फील करता है, लेकिन वो रुकी रहती है, कारण कि कहीं ना कहीं अपराध हो रहे, छोटे छोटे हो रहे लेकिन हो रहे। और ये अपराध हो सकते हैं कि वैष्णव सदाचार का पालन ना हो रहा हो। वैष्णव सदाचार का, जैसे सनातन गोस्वामी जी ने पूरी के पूरी डूज एंड डोंट्स काफी लिखवाए हैं, बताए भी, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव सदाचार का पक्के तरह से ही पालन करता रहे तो महाप्रभु उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये आभूषण है वैष्णवों के समाज में, उसको अगर कोई वैष्णव सजना चाहता है तो उसकी सजावट, उसका सुंदर रूप किस चीज से दिखता है कि कितना सुंदर वैष्णव एटिकेट का वो पालन करता है हर चीज में, जो उसका गहना है, इससे पहचाना जाता है कि वैष्णव। और अगर वो वैष्णवता का पालन कर रहा है, वैष्णव सदाचार का पालन कर रहा है हर परिस्थिति में, तो सबसे ज्यादा वही व्यक्ति ऑफेंसेस को अवॉइड कर सकता है। उसको मालूम है कि सेवा अपराध क्या होते हैं, तो किस प्रकार बचना है सेवा अपराधों से, मंदिर में कैसे एंटर करना, किस प्रकार प्रणाम करना, किस प्रकार विग्रहों को प्रणाम करना, किस प्रकार बैठना, हर चीज, तो सेवा अपराध से बचता है। वैष्णवों के प्रति अपराध या अन्य अपराध, उनके प्रति भी बड़ा सजग रहता है, उसको पता है कि हर वैष्णव जो है, जो भी भगवान का नाम ले रहा है वो वैष्णव है, तो मुझे हर एक को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार अगर वो इस सभी प्रकार की, कैसे खाना है, कैसे खाना, जूठा ना खाना ना, प्याना छुहाना, ये सारी चीजों का ध्यान रखता है वो, तो क्या फायदा होता है इसका कि कम से कम वो ग्रॉस लेवल के ऑफेंसेस से बचना शुरू हो जाता है। और फिर अगर कहीं सटलनेस रह गई कहीं किसी अपराध की, तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती, तो जाकर वो शुद्ध नाम ले सकता है। और शुद्ध नाम लेना ये हर भक्त के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इसी जीवन में शुद्ध नाम लूंगा। शुद्ध नाम का मतलब क्या है कि जिस नाम को बोला जाता है कि किसी ने अगर एक बार भी नाम ले लिया तो कृष्ण का संग कर सकता है, आध्यात्मिक जगत गोलोक धाम जा सकता है, ये वो शुद्ध नाम है कि जिसने एक बार भी नाम ले लिया उसके जन्मों जन्मों के सारे पाप समाप्त, जितना भी पीछे कर्म का था कुछ भी नहीं, सब खत्म, ये वो शुद्ध नाम की बात हो रही है। नाम की महिमा जो पढ़ते, तो जब व्यक्ति शुद्ध नाम ले ले, यही उद्देश्य होना चाहिए। कबे बोलो हवे से दिन आमार, ऐसा कब वो दिन आएगा मेरा, मेरी जिंदगी में क्या अपराध रुचि शुद्ध नाम में रुचि, कि मेरे सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे और शुद्ध नाम के प्रति मेरी रुचि हो जाएगी, भक्ति में ठाकुर जी बोले। तो कहने का क्या मतलब, ये उद्देश्य होना चाहिए, और जिसका उद्देश्य क्लियर है, जीवन का लक्ष्य क्लियर है, उसके सारे लक्षण अलग है, वो बहुत सजग रहेगा। जैसे पिछली बार भी चर्चा की थी, अहंकार वश व्यक्ति माफी नहीं मांगता, मेरी तो गलती नहीं थी, मैंने तो किया नहीं था, पहले वो झुकेगा तो मैं झुकूंगा, अगर मैं झुक गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अहंकार वश व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। लेकिन वैष्णव जन जो है उन्हें पता है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे रुष्ट है तो हमें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, गलती जब किसी की भी, तुरंत अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करता है, क्योंकि ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो सच में जाना चाहता है। और हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसका कोई प्लान ही नहीं है, जिसको वो केवल यहां एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कुछ। हमने देखा ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कि गुरु तक का ऐसा अपराध करते हैं लेकिन किसी तरह रगड़ रहे माला अभी भी टिके हुए, क्योंकि भगवान और गुरु जब ये लोग अपराध लेना नहीं चाहते, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करना चाहते कि चलो थोड़ा चांस देता हूं, शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए। लेकिन जो बहुत ग्रॉसली एंगेज है इन सब चीजों में वो समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए तुरंत पता चल जाए हमको कि ये मेरे से नाराज है, पता चल जाए कि इसने मुझे, इसके मन में मेरे हृदय में इसके मेरे बारे में कुछ है, या इससे उसने मेरी ऐसी बात हुई, तुरंत बोलना चाहिए ना प्रभु जी हरे कृष्णा। कहां पर ईगो को क्रश तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो झुकूं उसकी गलती, नहीं ये सब बेकार की बात है। वैष्णव समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत जाए बात करें, वांछा कल दृश्य करें और फिर रिक्वेस्ट करें कि प्रभु जी बताएं मेरे से कहां गलती है। तो अपना वैष्णवता दिखाना चाहिए, और वो व्यक्ति चाहे बेशक बाद में ऑफेंडेड ही फील करे, चाहे हम लोग अपना काम तो कर लें। जैसे कि मैं बताते ना, दुश्मन भी घर पर आए तो उसे पानी और कुछ मीठा पूछ लेना चाहिए, दुश्मन को भी। क्यों? क्योंकि आपके अच्छी वाणी से पानी से उसे हो सकता है उसका मन बदल जाए, आया वो मारने के लिए और कहने बात तो ठीक है, सॉरी गलती मेरी, चला जाओ। तो इस प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि सदैव जो है सजग रहे, सदैव वो कॉन्शियस रहे कि मैं किस प्रकार की क्रिया कर रहा हूं। जैसे भगवान बताते हैं कव्य अपते ही मोहि, है ना, कव्य अपते क्या शब्द है वो, कि बड़े से बड़े कवि जन जिनको ज्ञान है कर्म करने का, अकर्म के बारे में विकर्म के बारे में, वो भी मोहित हो जाते हैं ये समझने में कि करना क्या है, ये कर्म कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, विकर्म कर रहा हूं। लेकिन जो पूर्णतः ज्ञान में है वो समझ सकते हैं। उसी प्रकार भक्त को चाहिए वो हर सदैव ज्ञान में रहने का प्रयास करें, जो रियलिटीज हमें मालूम पड़ चुकी हैं उसके अकॉर्डिंगली जीवन जीने का प्रयास करें, तो जाके ऐसा भक्त आगे बढ़ रहा है। अन्यथा जो हमारे अनर्थस हैं ये कभी हमको छोड़ेंगे नहीं, इन पे पानी पड़ता रहेगा, हरि नाम का भी पड़ेगा, भक्तों के संकल्प पड़ेगा, और वीड्स जो है ये अनवांटेड ट्रीज ये उगते रहेंगे। एक छोटा सा पेड़ पौधा करने के लिए भी माली रखा हुआ हम लोगों ने, क्योंकि हमें मालूम है कि इस पेड़ पर पानी डालने से कुछ समय के बाद कुछ ऐसे पत्ते उग जाते हैं जो कि उसको बढ़ने नहीं देते, ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। और चैतन्य चरितामृत में तो ये पूरा एक सेक्शन है भक्ति लता बीज को लेकर, कि किस प्रकार गुरु और कृष्ण की कृपा से किसी व्यक्ति को भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। इतने बड़े ब्रह्मांड में पता नहीं कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसको कृष्ण की कृपा से गुरु जो है भक्ति का बीज देते हैं कि उगाओ उसको, और उसमें साधु संघ और हरि नाम के द्वारा जल डाला जाता है। लेकिन होता क्या है कि अगर वो व्यक्ति जागरूक नहीं है उसको बढ़ाने में, उसको लग रहा है कि मैं डाल रहा हूं रोज ठीक है, लेकिन साथ में जो खरपतवार उग रही है वो नुकसान करती है उसकी ग्रोथ में। अगर साथ साथ उसकी कटाई होती रहे, पानी सही समय पड़ता रहे, तो वो बता रहे हैं कि यही जो लता है बढ़ते बढ़ते कहां चली जाएगी, इस ब्रह्मांड को छेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल तक पहुंच जाएगी। ये कथा कहानियां नहीं, ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं दी गई किसी को सपना दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग अपना जीवन समर्पित करना बंद कर चुके होते कब तक, ये बिजनेस ये दुकान कब की बंद हो गई होती भक्ति की, क्या जी आप कोई नहीं जाता जी, अब तो बस हो गया बंद, अब पहले था, पहले लोग होते थे बदलाव नहीं होते, नहीं पहले भी जाया करते थे ऋषि मुनि, अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। कारण कि जो भी व्यक्ति इस गुरु परंपरा में टच में आ जाता है तो वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु, जिसने भी कृष्ण को तत्व से जान लिया वो गुरु है। और क्योंकि उसने क्या करा है, चौथे अध्याय का 34 श्लोक, उद्दीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान ने सत्व दर्शिना, पहली लाइन क्या इसकी, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, वो सेवा कर विनम्र भाव से प्रश्न करता है, सेवा करता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया इसलिए पीछे लगा हुआ वो, और जो चीज को बताई जा रही है वो माइलस्टोन आ रहे हैं उस समय पर, दिल्ली से आप वृंदावन जा रहे हो है ना जी, तो पहले गुड़गांव वो आएगा, फरीदाबाद आएगा जी, है ना जी, फिर तो पुराना फरीदाबाद आएगा अपोलो के बाद ऐसा करके, हाँ जी वो आएगा, इसलिए लोग चल रहे हैं, मालूम है अपोलो आ गया जी, है ना जी, फरीदाबाद भी आ गया, पुराना फरीदाबाद भी आ गया, फिर वो क्या था, वो टोल टैक्स आएगा जी, टोल टैक्स भी आया जी, इसका मतलब सही जा रहा हूँ, है ना जी। दूसरा टोल भी आएगा जी, दूसरा भी आ गया, कोसी हाँ, पलवल हाँ आ गया, होटल हजी वो पहुंच के, ऐसी कुछ है ना रास्ता। मैं फिर कहाँ पहुंच गया आगे में, छठी गढ़ा पहुंच गए, छठी गढ़ा वहां से लेफ्ट लेना आपको।
अच्छा,
सारा रास्ता जैसे जैसे बताया था इसलिए चल रहे हैं सारे लोग, क्यों? क्योंकि सबने देखा है, करा है, उसने बताया रास्ता, ऐसे ऐसे चलना है। ये है अधोश्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इस प्रकार भक्त लोग अलग अलग स्टेजेस पे, तो जो पीछे लगे हुए हैं वो देख रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ इस स्तर तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मैं यहां पर हूं, पहले मैं यहां था, अभी इधर हूं और कल इधर आ सकता हूं क्योंकि मेरे से ऊपर वाले इधर है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इसी तरह से चलता है। इसलिए आज तक ये बंद नहीं हुआ लोगों का भक्तिमय जीवन को चुनना, ये बंद नहीं हुआ। आज भी लोग जो है अपने परिवार को, परिवार में रहते हुए भक्ति करते हैं और पर कुछ लोग परिवार का त्याग करके भक्ति करते हैं। कोई दुकानदारी में, कोई बिजनेस में कमी नहीं है। कोई जो है वृंदावन में, हरिद्वार में आप जाइए, ऋषिकेश में आप जाइए, सारे धाम भरे रहते हैं हमेशा। और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं लोग, क्योंकि सबको मालूम है भारत, हर ग्रंथ हर प्रवक्ता यही बता रहा है कि भौतिक जगत दुखाल्य है और इसमें ये कष्ट है, और व्यक्ति कष्ट सह रहा है, फिर उसको बात याद आती है हाँ बोला था। लेकिन इतनी ज्यादा कंडीशनिंग है कि व्यक्ति सह लेता है। भागवत में लिखा है कि व्यक्ति तो नर्क में जाकर भी कंफर्टेबल फील करता है, उसकी आसक्ति हो जाती है वहां पर, पिटाई खा खा के ना, कि जैसे रोज 10 घंटे पढ़ते थे आज 5 घंटे पैदा हो जाएंगे खुश, उसको वहां पर भी जाकर जो है उस शरीर से सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वहां पर एक अलग प्रकार का उसको सुख प्राप्त होता है। मार के साथ ही सुख है, देखिए हर योनि में जाने के बाद है पनिशमेंट वाली योनि, लेकिन क्योंकि वहां पर भी कौन है, इंद्रिय भोग के सुख वहां पर भी है, इसलिए वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। इंद्र ने अपराध कर दिया बृहस्पति के प्रति, उन्होंने तुरंत उसको श्राप दिया, अपनी पोस्ट से सीधा गायब और कहां, सूर्य की योनि में, बहुत ही जगत। ब्रह्मा जी ने कहा बिना इंद्र के स्वर्ग चल रहे ही कैसे हो सकता है, ध्यान लगाए कहां है तो देखा नीचे, बुलाने आगे तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हारे ये काम है क्या? कहते नहीं आज कुछ मधुरा फीस चल रही है हमारी, संडे फीस है। कहते ये फीस है जो मलमूत्र त्याग रहे लोग, ये खा रहे तुम, इतना बदबूदार। कहते एक्सक्यूज मी, बदबूदार हुआ आपके लिए, अपने लिए तो बासमती राइस है। तो कहते ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा घर असली ऊपर है बेटा, ऊपर चलो। कहते क्यों, क्या मत, कहते सारी अप्सराएं हैं, तुम यहां तुम नहीं समझ पा रहे, कितना ही समझाया। कहते एक ही शर्त पे चलूंगा, मेरे साथ ही सब चलेंगी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा ये सब, और ये सब होगा वहां खाने के लिए। कहते हैं सॉरी आप यही खा लो, जो भगवान की मर्जी है वही होगा। कहने का मतलब है नहीं समझता व्यक्ति, यहां पर भी सुबह दोपहर शाम लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है। यस्य आत्मा बुद्धि कुण पे दिखा करके वो व्यक्ति ये समझता है कि मेरा जो ये शरीर है जो 3 धातुओं से बना है, कफ वात पित्त, यह मैं ही हूं, ये शरीर मेरा ही है, यही असली है। स्वाधिकलत्रादिषु भावमुज्यति, वो अपने आस पड़ोस के लोग, अपने परिवार के लोगों को मानता है कि मेरे अपने हैं, भूमि को पूज्य मानता है, इसकी पूजा करता है। फिर कह रहे हैं कि सलील न कर ही चित, वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति स एव गोखरा जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखरा, वो व्यक्ति उसकी बुद्धि इतनी दूषित हो चुकी है, अपने को शरीर मानकर, अपने आस पड़ोस के लोगों को अपना मानकर, इस भूमि को पूज्य मानकर, इन सब चीजों को सत्य मानता है, असत्य र सत्य करी माने, जो असत्य है उसको सत्य मान बैठा है, और क्या हो गया जनेशु अभिज्ञेशु, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे जो अज्ञानता में है लोग, वो किसके समान है, वो खर गाय की तरह बुद्धि है उनकी, और खर मतलब गधे की तरह बुद्धि है, कितने ही समझा लो नहीं समझ आता, क्योंकि वो सच मान बैठे यही मैं सत्य। पहले बोल रहे गाय की बोला, गाय तो बहुत अच्छी हुई, गाय का अगर बछड़ा मर जाए ना तो अगर उसकी जगह नकली घास का भी बना के रख देना तो उसको लगता है बच्चा उसको भी चाटने लगती है, ऐसी बुद्धि होती दूध देने लगती। खर मतलब वो गधा, वो सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करता है शरीर से, उसको क्या मतलब, उसको क्या लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना वजन उठा रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक, मेरा मालिक शाम को मुझे क्या देता है, हरी हरी घास देता है, अगर मैं इतना काम ना करूं तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जबकि नाले से लेकर घर तक आने में आस पड़ोस में देखते घास ही घास लगी हुई है, अपने को आजाद कर कर वो जितनी मर्जी घास खा सकता है, लेकिन मेंटालिटी क्या है, नहीं मेहनत करूंगा तब मुझे जो घास मिलेगी ये मेरी घास। तो इसलिए ऐसे लोगों को जानवर से कंपेयर किया जा रहा है जिन लोगों की बुद्धि पूर्णतः भौतिकतावादी हो चुकी है, समझाने पर भी नहीं समझते। इसलिए भक्तों को भी चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस देखें अपनी चेतना की, मेरी चेतना में क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी चेतना अभी भी वैसी ही है जैसे कुछ साल पहले थी या कुछ महीने पहले थी, कोई कुछ अपलिफ्टमेंट है कि नहीं, मैं कुछ तैयारी कर रहा हूं कि नहीं, तो प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भक्ति में ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति स्थिर हो जाए, वो या तो नीचे जा रहा था कि चेतना का डाउनफॉल हो रहा होता है या अपलिफ्टमेंट हो रहा होता, एक समय पर भी ऐसा नहीं कि टिका वो कहीं ना कहीं जा, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सोच रहा है ना हर समय, अगर तो भौतिकता के चक्कर में लगा हुआ है कोई प्लानिंग कर रहा है तो इट मीन्स कि डाउनफॉल है, क्योंकि जितनी चीजों के विषय में वो सोच रहा है उतने संस्कार गहरे कर रहा है, भोग विलास की बातें सोच रहा है तो चेतना का डाउनफॉल हो रहा है, क्योंकि इतना संस्कार जिस भी चीज विषय में सोच रहा है उसके इंप्रेशन पड़ रहे हैं, और जब यही थॉट वो स्पिरिचुअलाइज कर लेता है, कुछ रीडिंग करता है, कुछ कथा का स्मरण करता है, भक्तों से बातचीत करता है, मन उन चीजों पर लगाता है, प्लानिंग्स पर लगाता है, ठीक है, तो ये क्या है, उतना समय वो अपनी चेतना को ऊपर करता है। इस प्रकार व्यक्ति को सोचना चाहिए, और जो व्यक्ति कॉन्टिन्यूसली सोचता है, जो हमेशा सजग रहता है, जो जिसे बोलते हैं बलदेव विद्याभूषण महाराज कि हमेशा पूर्ण ज्ञान में रहना, जिसे स्थित प्रज्ञ इत्यादि शब्दों से बोला गया, जिसके कर्म पूछे अर्जुन ने कि कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ज्ञान में है, उसका हर कर्म हर क्रिया पूर्ण ज्ञान में रहती है, उसे मालूम होता है मैं क्या कर रहा हूं, और अगर कर्म अज्ञानता में हो रहा है तो बांध रहा है, ज्ञान में हो रहा है तो उसको लिबरेट करेगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं, तो उस स्तर पर आने का प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार कॉन्टिन्यूसली अपने इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, चाहे एकादशी के दिन पे या रोज करना चाहिए, प्रार्थना तो रोज ही होनी चाहिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले, बीच में भी, तो वो व्यक्ति सजग, जैसे ही आप जैसे बैग लेकर जाओ अपने रेलवे स्टेशन पर, एक मिनट के लिए बैग रख के इधर देखो, बैग बैग, तो उसी प्रकार हमारी चेतना का भी जो है ह्रास होता है। जिस समय आपने अपनी चेतना को या अपने मन को ढीला छोड़ा, शाइन करता हुआ आपको विषय में लगा देगा, पता भी नहीं चलेगा कब सोचना शुरू कर, क्या सोचना शुरू हुआ, कहां क्या प्लानिंग शुरू हुई। जिस प्रकार स्टेशन पे खड़े तो बैग गायब हो जाता है, उसी प्रकार कब हमारी चेतना ज्ञान से अज्ञानता में मुड़कर उन चीजों के विषयों में लग जाती है, पता नहीं चलता। तो प्रयास करना चाहिए कि हर समय ज्ञान में रहे, और ज्ञान का मतलब ही है कि किस चीजों का चिंतन करने से, एक्टिविटीज को करने से, सेवाओं को करने से मेरा अपलिफ्टमेंट होना है, और किन विषयों का चर्चा करके ज्यादा या असत्संग कर कर मेरा नुकसान होना चाहिए, और फिर पॉजिटिव लेके जाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है जी? कैसा ज्ञान जो है, दो तरह के ज्ञानी है, एक तो भगवद गीता में जो बता भगवान कह रहे हैं कि चतुर्विदा भजन्ते माम जना स्वीकृत नर्जा आर्ता आर्थी आर्थिक ज्ञानी अर्थार्थिक ज्ञानी चवर्तृष्ण। तो ये जो ज्ञानी है भगवान कह रहे हैं मुझे चारों लोगों में ये ज्ञानी प्रिय है। ये जो ज्ञानी है ये भौतिक जगत के सारे तत्वों को अलग अलग कर देखते हैं, और जब देखते हैं कि सब कुछ तो इन तत्वों से बना है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और एक आत्म भगवान का अंश ना, तो कहते हैं फिर कुछ है ही नहीं, आप कुछ खा भी रहे हो, पांच तत्वों से बना है, पांच तत्व खा रहे हैं, पांच तत्वों से निकल रहा है हर चीज, वो तत्वों के हिसाब से देखते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं। तो दुख कहां से आया, सुख कहां से आया, ये क्या रिएक्शन है, तो वो हर चीज को बड़े दर्शन के हिसाब से देखते हैं कि क्या है ये सब, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे आ रहा है, सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं है सब। इस प्रकार वो ज्ञान के धरातल पर 24 के 24 तत्वों को अलग कर सब कुछ अलग खोल देते हैं, पांच तत्व, पांच इंद्रियां, पांच विषय, पांच कर्मेंद्रियां, 20 फिर मन बुद्धि अहंकार, 23 और एक आत्मा, 24 सब अलग अलग है, कोई नहीं है। तो आखिरी में क्या होगा, ये आत्मा ही विलीन हो जाएगा किसमें, ब्रह्म ज्योति, खत्म बेकार सब। तो ये उस तरह के ज्ञानी, और एक वो ज्ञानी है जो ये जानता है कि जो आत्मा है ये सारे पदार्थ तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा बने हैं, लेकिन जो ये आत्मा है ये क्या है, भगवान की तटस्थ शक्ति है। और भगवान क्योंकि कह रहे मम्मे वांश जीव लोग, मैं मेरे अंश है सारे, तो ये मैं उनका अंश हूं, उस परमात्मा का, उस कृष्ण का, तो फिर उनका एक फॉर्म भी है, वो भगवान व्यक्ति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। उस स्तर तक पहुंचकर वो व्यक्ति जो ज्ञान में है, जो जानता मैं आत्मा हूं, और आत्मा बनने का मतलब यहां पर खत्म नहीं हो जाता, आत्मा का मतलब कि आत्मा क्योंकि एक्टिव है तो आत्मा को कहीं ना कहीं शरीर के साथ सेवा में लगना, तो ऋषि के ना ऋषि के शब्द सेवन भक्ति उत्तम, कि उसको मालूम है कि आत्मा बोलकर खाली नहीं बैठना कि मैं आत्मा हूं, आत्मा का मतलब कि हाँ ये एक्टिव है और ये शरीर जो इसको मिला है इसको प्रॉपरली एंगेज करना है, किसकी सेवा में, भगवान की सेवा। तो फिर वो अपने कर्मों को दूषित कर्मों की जगह ना लगाकर, उन कर्मों को ना करकर जो कि बांधते हैं, जो बंधन का कारण बनते हैं, वहां ना लगाकर उन कर्मों के प्रति लगाता है या उस डिवोशनल सर्विसेज में लगाता है जिससे वो मुक्त हो जाए या भगवान की प्रेममय सेवा में चला जाए। तो उस व्यक्ति को बोलते हैं ज्ञानी, जो ये जानता है मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है, किस प्रकार मुझे हर कर्म हर क्रिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए, ये वो ज्ञान। और जब व्यक्ति एक दूसरे स्टेप में भी, जैसे बलदेव विद्यावशन में, सदैव ज्ञान में रहो, मतलब हर समय उजाले में रहो, ताकि वो मालूम पड़ सके कौन सी चीज कहां है। जो व्यक्ति ज्ञान में है वो हर स्टेप बहुत अच्छे ढंग से उठाएगा। भक्तिमय जीवन में देखिए, आप किसी से कुछ भी डील करें, भक्तों के समाज में आए, कुछ भी करें, अचानक हर जगह ज्ञान का एप्लीकेशन, आपसे गलती हो गई, गाड़ी चला रहे हैं आप, थोड़ी देर अज्ञान में आ गए, अज्ञान का मतलब आंखें बंद कर ली थोड़ी देर के लिए, तो ठा ये अज्ञानता है, गाड़ी चला रहे हैं आंखें खोल कर चला रहे हैं, पूरा आंखें खोलने का मतलब आपको मालूम है कहां जाना है, ये ज्ञान है। थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी क्यों बोलते हैं, तो भक्तों के जीवन में भी अगर पूर्ण ज्ञान में है तो सावधानी से चलता रहेगा आगे, और जहां पर भी उसने कुछ गड़बड़ करी तुरंत दुर्घटना कर, तो ये ज्ञान। हाँ, तीन कैटेगरी, जो बार बार करने के बाद भी ना समझे, और दूसरा एक्सपीरियंस करके करे, और तीसरा सुनकर करे। देखिए, एक भक्त ना हर समय हर जगह भक्ति होता है, लेकिन उसका व्यवहार हो सकता है कई जगहों पर अलग। जब वो ऑफिस में है तो भक्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑफिस में आ गई तो मैं जो मर्जी कर लूं, प्रभु जी ने तो बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर समय मन और बुद्धि को कृष्ण के प्रति अर्पित रखना ही चाहिए, उसे पता होना चाहिए मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसमें मेरी चेतना क्या है। शोषण नहीं करना किसी, जैसे हम भक्तों में बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति को आपको वो करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, तो भेद या समय काल परिस्थिति के अनुसार व्यवहार हो सकता है, लेकिन हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैष्णवता नहीं खोनी कभी, एक भक्त हर जगह भक्त, राजा तक भक्त बने, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज राजा थे तो भी भक्त थे। ऐसा थोड़ी कि राजा जब चला रहे राज्य तो भक्त नहीं है, समय घर में भक्त है, केवल मंदिर में जो माला करने के समय तभी भक्त होते हैं। भक्त गुण तो हर जगह प्रकट होते हैं। बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारा काम मूर्ख बना रहा है कुछ कर रहा है तो वहां पर मूर्ख नहीं बनना, बस ये है। भक्त का मतलब ये थोड़ी कि वो कोई उसको कहे पूजी यहाँ पर साइन कर दो, मेरी फोटो लगी हुई, मैं धारक को सब कुछ देने का वचन देता हूँ, भक्त का मतलब थोड़ी साइन कर देगा। आपको लगता है मुझे कोरोना था कभी पैशन गलत है ठीक है। देख लीजिए आप तो पहले इतने विनम्र हैं, बाद में बता दूंगा। यस क्वेश्चन है कि जब बाहर हम लोग ऑफिस में हैं, घर में हैं, या भक्ति में कार्य नहीं कर रहे, ओवरली देखने में ऊपर से देखने, तो क्या उस समय नीचे जा रहे हैं? नहीं, ऐसे क्या होता है जैसे जब अर्जुन युद्ध कर रहा था ना तो भी भक्ति में आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उस समय भी उसका मन और बुद्धि भगवान की प्रति थी और इंस्ट्रक्शन जो आ रखी थी उसके अकॉर्डिंग कर रहा। जैसे एक बार एक गुरु महाराज ने किसी व्यक्ति को बोला तुम बिजनेस करो और बिजनेस में आगे बढ़ो, तो आप बिजनेस में आगे बढ़ने का क्या मतलब है कि वो अगर धन कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है और उस समय भगवान को भूला भी हुआ है, लेकिन गुरु की इंस्ट्रक्शन मालूम है उसको कि मुझे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो बिजनेस को आगे बढ़ाने उसकी भक्ति में आगे बढ़ने का। मैंने इसलिए बोला हमारा हर कर्म हर क्रिया जो है भक्तों के निरीक्षण में होने से क्या होता है, हर कर्म या हर क्रिया स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। तो वो बताएंगे क्या दान दो, कितना करो, कितना इन्वेस्ट करो, कितना टाइम निकालो, कितना बिजनेस करो, अगर बोल रहे लग जाओ देखी जाएगी जितना भी करना है तो करो, क्योंकि वो आखिरी में कहेंगे लाओ जितना है इकट्ठा लगा दो हमने, क्योंकि जब हमने अपने पूरा धन लगाकर धन इकट्ठा कर लिया गुरु के कहने पर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो उनको मालूम है इसके कर्मों का फल है, इतने घंटे लगाए इसने 12-12 घंटे, वो 12-12 घंटे का हिसाब किताब भगवान की प्रेम में सेवा में लगा देंगे, ठीक है ना। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विरास से आस्वादन करी। राधा कृष्ण ने आत्मा एक ही है, दो देह ले लिए, समझ रहे हैं? और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो उसका फॉर्म रूप दिया है राधा, तो कोई अलग से कोई तत्व नहीं है, राधा तत्व नहीं है, साइंस में नहीं बोल सकते, या राधा तत्व बोल सकते हैं क्योंकि वो एक परम तत्व है, बट कृष्ण ने अपनी शक्ति को एक रूप दे दिया है स्त्री का, और इनका काम है कृष्ण को मेन तीन शक्तियां संवित शक्ति, संधनी शक्ति, हराधन शक्ति, इन तीन शक्तियों से भगवान कृष्ण को प्रसन्न रखना हमेशा। तो ये पहला भगवान का सृष्टि का आरंभ का एक्सपेंशन है भगवान की अपनी शक्ति, और जो शिव तत्व है या जीव तत्व है ये सब भगवान जो विष्णु है तो वो अपने ही एक्सपेंशन अपने विस्तार करते हैं, क्योंकि ये एक अलग से शिव तत्व एक नई क्वालिटी बनी है, समझ लीजिए। ना वो विष्णु तत्व में पूरा है ना जीव तत्व में पूरा है। तीसरी कैटेगरी, जैसे अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो तटस्था शक्ति ना बहिरंगा है और ना कुंडतंत्र है, वो क्या है, तटस्थ में, तट पे है, लेकिन तट से वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, लेकिन ये अंतरंग बन जाती है तब जब वो अंतरंग की संरक्षण में आती है, और बहिरंग बन जाती है तब जब वो पूरी चेतना से बहिरंग में आ जाती है। उसी तरह शिव तत्व एक अलग से तत्व है, जीव तत्व हम जब लोग हैं और विष्णु तत्व विष्णु ही। केवल सृष्टि का आरंभ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए भगवान को तमोगुण में रहकर वो सृष्टिपात करना पड़ता है, तो वो करने के लिए फॉर्म है भगवान राधा तत्व। राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण, हम इन तत्वों में नहीं गिन सकते जो कि हम लोग इस संसार को समझने के लिए बात करते हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, सिंपल राधा तत्व भी बोल लो उसको, लेकिन वो राधा रानी कृष्ण की एक एक्सपेंशन है जो अंतरंगा शक्ति रूप में विस्तार दिया है, रूप दिया है, खत्म। बोलने को बोल सकते हैं, अदरवाइज इस श्लोक के बाद जो मैंने बोला कि राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह, देह दो है, आत्मा एक चैतन्य चैतन्य, कोई अलग से तत्व नहीं है, काउंट नहीं कर सकते, ज्योति नहीं कर सकते, ज्योति तो दूसरे लोग समझते हैं। तो ये एक ही आत्मा है दो शरीरों में, इसलिए ताकि अन्य अन्य प्रकार के रसों का आस्वादन कर सके कृष्ण, इसलिए दो रूपी हैं। गौरांग महाप्रभु के अंदर राधा कृष्ण दोनों ही आस्वादन कर रहे हो, तो बोल सकते गौर तत्व किसमें आएंगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे तत्व हो जाएंगे, हर एक एक्सपेंशन एक तत्व है। अगर आपको लगता है गलती हुई तो मांगने में क्या, भौतिक समाज में तो लोगों से ठीक करना बड़ा मुश्किल है आजकल, तो खासकर वैष्णव को चाहिए कि वो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कुछ ऐसा कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर उसका उसी हिसाब से जवाब भी दे दे, उसी हिसाब से मतलब कि लीगल वे में हेल्प लेकर प्रेशर डलवा कर उस तरह कर, जो मतलब आसान से कह सकते, खुद दुष्ट ना बने। कल को मान लो अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा, आपने दो मारे पुलिस केस हो गया, बाकी माला मंदिर की जगह तिहाड़ में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसने गुस्सा दिखाया कि मैं भी दुखाऊं, प्रभु जी ने बोला समझदारी से, हाँ वो ठीक है ना, मतलब कई बार होता क्या है कि हम भी गुस्सा दिखा डालते, वो नुकसान करते हैं। मुझे मिले कई भक्त वहां से, एक बार तो तिहाड़ जेल के अंदर ही एक व्यक्ति ने गीता स्पॉन्सर कर दी, मैं बांटने गया था, कहते मेरी तरफ से, अब वो 15,000 रुपये भेज रहे हैं हैदराबाद, 20,000 आ गया तो आने आने वाले, हाँ बिल्कुल। वही मैंने बोला कि भक्त तो हर जगह भक्त है ना, कई बार लोग बोलते हैं आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, वो कहता है जी मैं जब असुरों के बीच में खड़ा होता हूँ असुर हो जाता हूँ, जब सटोरियों के बीच में तो सट्टा भी लगा लेता हूँ, और जब मंदिर में आता हूँ माला भी कर लेता हूँ, तो आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए, भक्त वहाँ भी भक्त है, हर जगह भक्त है, और उधर रहकर भी वो कोशिश करता है, अगर उनके बीच में जाता है तो उनको पकड़ के मंदिर में लाने की कोशिश करता, क्योंकि वो बड़ी जल्दी लोग उससे सन छुड़ा के भागने की कोशिश करते हैं, ये फिर वही बात करेगा तो अपने दूर रहते, लोग समझ जाते हैं कौन व्यक्ति है कैसा व्यक्ति है। तो व्यक्ति प्रयास करना चाहिए हर जगह ऐसे रहे, आचरण हर जगह अच्छा रखना, कहीं कोई गलत है, कोई दिक्कत कर रहा है, परेशानी कर रहा है, तो उसको समझाने का तरीका अलग हो सकता है।
और कितनी गालियां दे रहा था, कितनी बोल दे रहा था, पता नहीं चलता, लेकिन प्रभु इसके नाम लाज बचा के नहीं।
ईमानदारी, हमारा अहंकार, हमारा घमंड, हमारा स्टेटस, हमारा कई तरह की चीज ना जब भक्तों के बीच में नहीं क्रश होती तो कई बार भगवान अभक्तों को भेजते ये जहां मतलब होता है कई बार इस तरह कि एक बार तो तारे दिखा देते कोई ना, बहुत अच्छी परीक्षा होती है कई बार। कोई छोटा सा आदमी ऐसा कह जाता है कि कहते कमाल है सारी कहां फंस गए। तो भक्तों के लिए ना आप समझिए, भक्तों के लिए भगवान के प्लान है ना, भक्तों पे कष्ट आने वाले जितनी भी चीजें सब भगवान के द्वारा प्लान होती चीज अपने भक्तों को शुद्ध करने के लिए। खूब धोखा बजाया जाता है, एक हीरे को कितना रगड़ा जाता है तब जाकर तराशा जाता, उसको चमकाया जाता है, उसको तब चमक आती है। लेकिन वो जो घिसाई हो रही थी और वो मना करे कि मेरे को लग गई चोट, लग गई हड्डी, दिक्कत हो रही है, मत करो, ये सब फायदा नहीं ना, वो तो चमक कर क्या बनने वाला है समझ। तो भक्तों के जीवन में ये सारे कष्ट दुख समस्याएं लोगों के द्वारा छेड़ा जाना कुछ करना, वो तो धन्यवाद करना चाहिए भक्तों को, किसका, उन लोगों का, उन सिचुएशंस का जो उसको बार बार आके पिन प्रिक कर रही है, वो चुभा रही है, ये बताने के लिए कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। आपको मैंने गाली दी कैसे लगी, बुरा लगा, आपको जब तारीफ करी अच्छा लगा, हाँ तो अभी आप कंडीशन लो। ये थर्मामीटर है भक्त के लिए, कौन बताएगा नहीं तो, वो तो अच्छे अच्छे भक्तों के बीच में रहता है, थोड़ा प्रसाद खाया, थोड़ा ग्लोरीफाई खाया, थोड़ी निंदा के बाद उसको लगता है मेरे जैसे कोई भक्ति नहीं। तो भगवान ऐसी सिचुएशन देते हैं उसकी लाइफ में ऐसी कि एक बार तो उसको लगता है कुछ नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो इतनी माला भी करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, भक्तों के लिए भगवान के पास विशेष प्रबंध है हर चीज का, हर मानसिक और शारीरिक रोग उसको आते ही भगवान की तरफ से है। अब कर ठीक, अब क्या सोचता है, अब उसको फेस कर हर क्षण। तो हर प्लानिंग मतलब भगवान की उसके अकॉर्डिंग ही होगी। दुखी नहीं होना, इसमें सहना है, आप देखो ना कितना फील होता है आपको, और सह सह कर आपको बस सब बहुत हो गया, जितने मर्जी आ जाए। कुंती महारानी इतने दुख सहे, इतने दुख सहे, कहते हैं भगवान खुश हूं मैं, और दो बताओ कुछ बोलते हैं मंदिर में आके मुझे दुख दो, कुंती महारानी कहते हैं। अर्थात इसका मतलब यहां से लेकर कुंती महारानी तक के स्टेज में पहुंचना है कि ऐसी चेतना हो जाए जब बोले भगवान और कष्ट दो, ऐसी चेतना हो जाए कि जब वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आप पे इल्जाम लगा रहे हैं और आप उन भक्तों का भला सोच रहे हो। हरिदास ठाकुर, जीसस क्राइस्ट टांग रहे सूली पर, वो कह रहे भगवान माफ कर देने, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो उनके अंदर अभी भी क्या देख रहे हैं कि ये सुधर सकता है, ये ठीक हो सकता है, उनको मार पड़ेगी, गलत कर रहा है। हरिदास ठाकुर भी कह रहे हैं माफ कर दो, उनको माफ कर दो, ऐसे चेतना हो जाती भगवान की। लोग कहते हैं तुम किस तरह के लोग हो, वासुदेव दास को पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया, इतना कोढ़ कि पस पड़ गई पूरे शरीर पर, कीड़े पड़ गए उनके शरीर पर, कीड़े उनके पस को खा रहे हैं, कीड़ा गिर गया नीचे, उसको उठा रहे हैं, तू खा। वैष्णव तक मतलब प्रकाष्ठा है, मतलब वो कि मेरा शरीर तो गंदा हो गया, खराब हो गया, बट तेरे लिए कुछ शायद खाने के लिए ऐसे, तू तो खा ले, तू तो एंजॉय कर, नो प्रॉब्लम, तेरे तू तो भूखा रहे, अगर मेरे शरीर से तुझे कुछ फायदा हो रहा है तू ले ना, क्या दिक्कत। फिर भक्त प्रार्थना कर रहे कि भगवान इस संसार के सारे लोगों को जितने भी पाप किए इन्होंने सबकी सजा मुझे दे दो, ऐसा कर सकती मेरी एक प्रार्थना, ऐसा कर लो, मुझे जितने मर्जी सालों तक, जितने मर्जी जन्मों तक नरक में रखो, सबके कष्टों को मुझे दे दो, इन सबको शुद्ध कर कर अपने भगवान का अपने धाम बुला लो। हम कहते हैं भगवान सबको यहीं रखो, सड़ने दो इनको, इन्होंने मेरे बारे में ये बोला, इसने ये किया, तो मुझे तो ले लो जल्दी से ऊपर, ये वैष्णवता नहीं। इसलिए जब तक पूरी तरह त्राश ना दिए जाए ढंग से तब तक बारी नहीं आएगी। तो ये बहुत ही जगह, ये प्लेटफॉर्म भक्तों के लिए उनके शुद्ध होने के लिए है, और धन्य है वो भक्त लोग जिनको कष्ट आते हैं लेकिन जो इन कष्टों को भगवान की कृपा समझते हैं वो धन्य है। वही होगी ना, कृपा समझ में विचलित क्यों होंगे फिर, वो तो हर परिस्थिति में खुश रहता है, तो ऐसे भक्त बनने का प्रयास। हाँ, कि प्योर प्योर डिवोटी सिंड्रोम। कि अपने बारे में समझ देखिए, एक तो दो तरह से है कि एक बार तो सच में लगता है कि व्यक्ति कुछ कर भी नहीं रहा होता, और उसको फील भी हो रहा था कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता। वो कुछ इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसमें नाम हो, शौहरत मिले, और इस सेवा में तो कुछ है ही नहीं तो मैं करूँ क्यों, तो वो कहता है छोड़ो मैं घर ही बैठूँ। एक तो ऐसा होता है। हाँ, इसलिए उसी प्यार करना। और दूसरे सच में होते हैं कि जिनको लगता है कि मैं हूँ कौन, मैं कर क्या सकता हूँ। जो भक्त है वो सच में अपने द्वारा किए गए हर कार्य का श्रेय भगवान को, गुरु को देते हैं। उनको पता कि मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या सकता हूं, मेरे अंदर कुछ ऐसा गुण नहीं है। तो फिर वो फील करता है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो भगवान को अर्पित करूं। कॉम्पिटेंट है फिर भी नहीं कर पा। देखिए होता क्या है कि भक्तों में कई बार होता है इस प्रकार, और भक्तों में बाहर भी होता है, कई लोग इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते, उनको लगता है कुछ कर नहीं पाऊंगा, बैक बेंचर्स थे इस तरह के लोग। तो ये कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि हर एक की नेचर एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि तीन गुणों से बना सब कुछ रोज, और आप हर एक को एक चश्मे से नहीं देख सकते कि ये हर व्यक्ति ऐसे ही होना चाहिए। हर एक की नेचर थोड़ी थोड़ी अलग रहती है, उसके हर एक का एनर्जी, हर एक की मानसिक वो जो भी है मतलब शक्ति, हर एक का अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे क्लिक कर जाएंगे, कुछ लोग जीरो से उठकर ऊपर तक आ जाएंगे, कुछ ऊपर से नीचे भी चले जाएंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन बताया जाता है कि गुरु का काम क्या होता है, इन सब चीजों को, सब क्वालिटीज को, सब तरह के भक्तों को ये सोचे कि मैं कैसे अंगेज कर सकता हूँ, कितने में कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, उसको ऐसी सेवा दो घर में होगी, घर से क्या कर सकता है बता, और उसको इतना अप्रिशिएट करो उसकी सेवा को, क्योंकि मैंने बताया ना ग्रेटिट्यूड, कि कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छा कर दे, जिसने हमारे किसी अच्छे प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प की है, तो वी शुड ग्लोरीफाई देम, बिकॉज हम कुछ नहीं कर सकते थे, इनकी वजह से हमने किया। तो जब भक्तों को हम लोग उसका बेनिफिट देते हैं, उसका अप्रिसिएशन देते हैं, तो उसको लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं उसका मतलब। तो कई बार एनकरेजमेंट से भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, हाँ अप्रिसिएशन से भी। और हम जेन्युइन अप्रिसिएशन करें, झूठा ना करें, क्योंकि झूठा वाला करेंगे तो उसको पता है अनर्थ बन गया उसका। और एप्रिसिएशन एकदम जेन्युइन होना चाहिए, लेकिन होना जरूर चाहिए जो छोटा भी काम हो। बहुत ही जगह जब स्कूल्स में कॉलेज बताते हैं, छोटी सी बात में सॉरी बोल दो, छोटी सी बात में थैंक्स बोल दो, तो उसी तरह आप देखोगे जब सीनियर डिवोटीज भी कभी डील करते हैं, छोटी सी छोटी सेवा के लिए भी थैंक्स बोलते हैं, कई बार थैंक्स बोलते हैं महाराज गुरु से। होता है गुरु जी, हम सब लोग कंडीशन स्टेज से सीधा शुद्ध प्रेम में नहीं आएंगे। कंडीशन स्टेज से जब सेवा करना शुरू करना, तो सेवा के रिजल्ट से अटैच होंगे पहले, तो मुझे क्या मिलेगा। जब इस तरह वो कुछ सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लेगा, तो कहेगा उसका करूंगा मैं, इससे बढ़िया तो यार छोड़ो ना, सेवा अपने स्वार भाव से करूँगा। तो बाद में जो है वो और अच्छा शुरू होता है, लेकिन अटैक तो माया के होने, क्योंकि भगवान ने ऐसे थोड़ी किसी को चिप दे के बोल दिया जो आज सबकी परीक्षा होगी, अच्छी परीक्षा होगी, खूब रगड़े लगेंगे, और अच्छे ढंग से तराशने के बाद भगवान ऊपर बुलाए। जब तक कि व्यक्ति पूरी तरह धुल ना जाए, पूरा उसकी मिट्टी निकल ना जाए, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से मिट्टी झाड़ ली और अंदर रह गई, नहीं, भगवान को व्यक्ति पूरा ओके टेस्ट स्टैंप लगा हुआ चाहिए ऊपर। तो वो बनने के लिए व्यक्ति को यहाँ पर खूब मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, और जितनी भी कला कलेश इस तरह की चीजें आएंगी उसको भगवान की कृपा माननी पड़ेगी कि मेरे को थैंक गॉड कोई मुझे। देखिए सिंपल सा बात है, अभी भी हमें क्रोध आ रहा है तो तुरंत मानना चाहिए आई एम नॉट प्योर डिवोटी बाबा। अभी भी लस्ट है दिमाग में, स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षण है, तो आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी। अभी भी खाने के प्रति बहुत ज्यादा वो है, तो आई एम नॉट अ गुड डिवोटी। यू नो अभी मैं इंद्रियों का गुलाम हूं, इंद्रियों के वश में हूं, अभी भी मेरी कंडीशनिंग है इतनी, अभी भी कोई व्यक्ति जब कुछ बोले, अच्छा बोले तो अच्छा लग रहा है और गलत बोले तो गलत लग रहा है, तो तुरंत समझ जाओ कि अभी भी हमारी स्टेज बहुत खराब है। तो जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति को इन सब चीजों से जय विजय से, है ना, हार से और आपका सुख दुख से, गर्मी सर्दी से, शब्दों से, इन सब चीजों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी जब स्टेज आती धीरे धीरे तब आनंद आता है इसलिए भक्ति में, क्योंकि फिर उसके पास कुछ भी आ रहा है, कुछ भी गिर रहा है, कुछ भी पड़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। अभी क्या है कि हर छोटे से स्पीड ब्रेकर पे, क्योंकि शॉकर खराब है हमारे, तो उछलते हम लोग, ठा 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 आवाजें आती हैं। लेकिन जब अच्छे शॉकर लग जाएंगे और अच्छी गाड़ी में होंगे तो वो सब खड्डे नहीं परेशान करेंगे, और फिर शुद्ध भक्ति का लेवल तो प्लेन से जाने का लेवल है, उसको सर स्पीड ब्रेकर से करने क्या। तो इस तरह की तीन स्टेजेस हैं, तो प्रयास करें, क्योंकि जितने लोग हमें एजिटेट कर रहे हैं आसपास के लोग, चाहे जानबूझकर कर रहे हैं, चाहे आदत से कर रहे हैं, चाहे शायद गलती थी, कुछ भी बोल रहे हैं, बट अगर हम लोगों को लग रही है बात यहाँ पे उसके बोलने से या कुछ करने से, तो मानना चाहिए कि बहुत सफाई की जरूरत है। वो तो एक कारण बना मुझे ये बताने का कि मेरी कंडीशनिंग कितनी है, बात समझ पा रहे हैं, उसके किसी मिसबिहेव से या मिसअंडरस्टैंडिंग से या मिस कम्युनिकेशन से मुझे चुभ रहा है कुछ, तो आई शुड थैंक्स बाबा तुम्हारी वजह से, मतलब उसको डायरेक्ट तो नहीं बोल पाओगे, लेकिन फील करना चाहिए कि हाँ, मतलब अभी भी मेरी बहुत कंडीशनिंग है, मुझे ठीक होना है, ये कारण बना है मुझे बताने का कि अभी मैं उस लेवल पर नहीं हूं। तो इसलिए एक प्योर जो ये हम भक्ति विषय में कर रहे हैं ना, 26 गुण भक्तों के, तो वो 26 गुण भक्तों की याद होनी चाहिए, दिखने चाहिए, पता चलना चाहिए, ऐसा बनना है मुझे, अभी मैं ऐसा नहीं हूं। ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है कि वो अननेसेसरीली ऐसी पोजीशन पर जाता नहीं है, ऐसे लोगों को सहन नहीं करता जो अपराध करते हैं या निंदा करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहता वो। क्यों रहता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये व्यक्ति अगर मेरे को अपने को शुद्ध भक्त नहीं मानता वो, लेकिन उसको मालूम है कि कुछ ना कुछ सुनाएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा मुझे, तो मैं अवॉइड करूं क्योंकि इसको अपराध लग रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब गोपी गोपी बोला तो सबने कहा तुम गोपी क्यों बोल रहे हो, कृष्ण बोलो। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भाव को थोड़ी समझ पा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु मारने के लिए भागे लड़के लोग, चैतन्य को जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, तुरंत संन्यास लिए महाप्रभु कि सन्यासी को देखो तो ये क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसके रेस्पेक्ट करेंगे, तो इनके अपराध खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मध्यम अधिकारी भी अपने को दूर रखता है ऐसे लोगों से जो एनवीएस है, ये जो निंदा कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी ये स्तर बहुत ऊंचा है, हम लोग अभी कनिष्ठ अधिकार के स्तर पर हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग सख्ती से नियमों का पालन करते हुए, वैष्णव सदाचार का पूरी तरह से पालन करते हुए अपने जीवन को, और ऐसे सिचुएशन आने पर समझ जाएं कि ये हमारे पता चल रहा है कि अभी कितनी कंडीशनिंग है, ठीक है ना। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।